है, तो ना इस्लाम कहता है कि बच्चों की खातिर तुम अब्यूज सहो, ना इस्लाम कहता है कि तुम पागल हो जाओ तो अब्यूज सहो, ना इस्लाम कहता है कि तुम्हें आजादी का इतना शौक है तो तुम आजादी के लिए जो है वो तलाक ले लो। ये दोनों ही चीजें गलत है, ये अलग बात है। तलाक के असरात कोई कम नहीं होते, इंसान के जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जज्बाती तौर पे वो हिल के रह जाता है, ठीक है, और बच्चों तक में वो असरात जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी इतनी जिद ना करे या इतना गुस्सा ना करे या इतना झगड़े कि यहां तक नौबत ना आए कि उसकी सजा बच्चों को मिलनी शुरू हो जाए, तो ऐसा कदम बहुत सोच समझ के उठाना चाहिए दोनों को। लेकिन अगर एब्यूज या शौहर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा और घर बैठा हुआ और औरत से कहता तुम जाओ और जाके कमाओ और घर चलाओ, या मारपीट करता है, या उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं करने के काबिल है, या गालम गलोच करता है, टॉर्चर करता है, मेंटल टॉर्चर करता है, कहीं को फिजिकल नहीं होता, मेंटल टॉर्चर करता है, ये सब जेन्युइन रीजंस हैं जिनकी बेस पे औरत खुला ले सकती है और वो इसमें हक बजानेब है, या औरत अदालत में जा सकती है और तलाक तलब कर सकती है। अगर आदमी ने अरसा दराज से औरत को छोड़ा हुआ है, उसके बिस्तर पे नहीं आता, उसका हक जौजियत अदा नहीं करता किसी भी रीजन की वजह से, तो वो इस काबिल नहीं है, या वो बीमार है, या वो जेल चला गया हुआ है। एक औरत ने रابطہ किया था मुझसे, उसने कहा कि मेरे शोहर को उम्र कैद हो गई है, यानी पता नहीं 25 साल के 26 साल उसने कहा उसको कैद हो गई है, सजा मिल गई है। तो उसने कहा कि अब मैं इतने साल रहूं तो मैं तो कितने साल की हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, और मेरी नीड्स हैं तो मैं क्या करूं। तो ऐसी औरत के पास हक है कि वो अदालत में जा सकती है और वो खुला ले सकती है, और जहां पर आदमी की तरफ से जुल्म हो रहा है ना, तो वो तलाके जरर फाइल कर सकती है। अब हम यहाँ पे इन मुल्कों में तो ये नहीं है, लेकिन जो इस्लामी कानून है तो एक तलाके जरर भी हो सकती होती है, और औरत गुनाहगार नहीं है जब वो तलाके जरर अगर मांगती है। यानी तलाके जरर क्या है, यानी उसको कोई जरर पहुंची है, कोई तकलीफ उसको पहुंचाई गई। मसलन है आजकल ये भी है कि बाज आदमी ना मर्द है, औरत के हकूक अदा नहीं कर सकते और वो शादियां कर लेते हैं, या कौमे लूत वाले अमल में वो मुब्तला है और उनको बीवी की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने शादी कर ली। तो ये औरत पे जुल्म है, ऐसी औरत को खुला के बजाय तलाके जरर ले लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि खुला के अंदर तो उसको कुछ वापस करना पड़ेगा, तलाके जरर है तो उसको कुछ वापस नहीं करना, उसके सब हकूक मिलेंगे उसको, उसका मेहर उसको वापस नहीं लौटाना। तो खुला तो ये है ना कि औरत अपने लिए खुद अलैदगी मांगती है कीमत चुका के, ठीक है। तो इसके अंदर देखना चाहिए, अगर तो लेजिटिमेट रीजन है, अगर वो इस तरह के हालात में फंस गई है तो वो बिल्कुल तलाक ले सकती है, और ये बेहतर है उसके लिए, इसलिए कि वरना वो कहीं हराम में पड़ सकती है, या जहां पे जहनी मरीज भी औरतें बन जाती हैं तो वो भी कई कई दफा हराम में पड़ जाती हैं, क्योंकि वो फिर बाहर ऐसी दोस्तियां कर लेती हैं, क्योंकि उनको जब घर में नहीं कुछ मिल रहा तो वो कहीं और जाके अपना दिमाग लगाएंगी। तो तलाके जरर क्या है कि किसी जरर की बुनियाद पर खाविंद और बीवी के दरमियान अलहदगी हो जाए, और ये जायज है, ठीक है। जो भी चीज उलमा कहते हैं कि जो चीज भी बीवी के लिए नुकसान है या उसके साथ ऐसा बुरा सलूक किया जा रहा है, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, मानवी हो, ये चीजें औरत को उसके जो भी माहौल जिसमें वो रहती हैं, जहां जिस जगह की भी वो हैं, वहां पे उस माशरे में वो चीजें गलत समझी जाती हैं जो सलूक उसके साथ किया जाता है, तो फिर उसके पास ये राइट है। इसी तरह इसमें एक ये भी वजह हो सकती है आदमी का फिस्को फुजूर, कि यानी वो शराबी है, वो शराब पी के आता है और वो ऐसे या कोई आदमी अगर किसी औरत को ऐसे काम करने पे मजबूर करता है जो हराम है काम, और उस पे भी वो औरत तलाके जरर ले सकती है। एक और बात इसमें जरूरी है और वो ये समझने की है, क्योंकि तो ये अल्लाह की हदूद है, इसके ऊपर ये बात की गई, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको क्रॉस ना करना। याद रखें, जब आदमी तलाक कहता है तो तलाक चाहे वो डराने धमकाने के लिए, जी मैंने कह दी, या झगड़ा हुआ था मुझे बड़ा गुस्सा आया मैंने कह दी, या मैंने तो बस मजाक में कही थी, तलाक मजाक में भी हो जाती है, गुस्से में भी हो जाती है, डराने धमकाने के लिए कहा गया तब भी हो जाती है। जब भी ये वर्ड कहा जाए तो उस वक्त तलाक हो जाएगी। हाँ, ये अगर कोई कहे कि मैं तुझे छोड़ देता हूं, आज से मेरा तेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तब पूछा जाएगा कि क्या आपकी नीयत तलाक की थी या वैसे ही आपने कहा था, तब नीयत पूछी जाएगी। लेकिन जब वर्ड तलाक बोल दिया तो नीयत नहीं पूछी जाएगी कि आपकी नीयत क्या छोड़ने की थी या आपने मजाक में कहा था, आपकी नीयत क्या छोड़ने की थी या आपने जस्ट गुस्से में कह दिया। तो तिल का हुदूदुल्लाह, जब ये कह दिया ना, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई बाउंड्रीज है, इनको क्रॉस ना करना, और जो इन बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा फौलाइका हुमुल ज़ालिमून, तो वो जालिम है, यानी जो इनको सीरियस नहीं लेगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि ऐसे मामला कोई हद फॉलो ही नहीं की जाती, जिसका जो जी चाहता है वो करता है, और इसमें सब लोग खुद को आजाद समझते हैं, घर वाले भी और शोहर भी और या लड़की के घर वाले सब समझते हैं कि हमारा जिस तरह जी चाहेगा हम इसको हैंडल करेंगे। हालांकि ये कितना सख्त मामला है, ये इन आयात से आप देख लें कि ये हदूद है, जो इनको क्रॉस ना करें। तो दीन की समझ इतनी जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ये हैं जो अल्लाह ने बाउंड्री सेट की हुई है। क्या ये पता होती है लोगों को? नहीं। क्या इनको कुछ समझा जाता है? नहीं, सब मनमानियां करते हैं, और ये पता ही नहीं है कि अल्लाह की किताब में, कुरान में, जिसको पता नहीं कितनी दफा रमजानों में पढ़ पढ़ के खत्म किया होता है हर मुसलमान ने, या जिंदगी में कितनी दफा पढ़ा होता है, पता नहीं होता कि इतनी सख्त बात है कुराने पाक में इस काम पे। बल्कि इसको बदला लेने के लिए समझा जाता है कि ये भी बदला लेंगे, हम क्यों दें इसका सामान वापस, हम क्यों इसको देते, अब ऐसे ही जाइए। तो हम ये नहीं जानते कि हम आजाद नहीं है इन मामलात में, ठीक है, हम गुलाम है अल्लाह के। जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हमने मान लिया कि मैं अल्लाह की गुलाम, मेरा इलाह मेरा रब है, फिर कैसे हम इतनी नफरत में आगे बढ़ सकते हैं कि किसी से ज्यादतियां करें और हमें परवाह ही ना हो कि अल्लाह का क्या हुक्म, कैसे हम किसी के साथ इस तरह का सलूक कर सकते हैं कि पता है कि ये मेरा हक नहीं है, मगर इतनी दूसरे से दुश्मनी हो गई कि दिल करता है कि इसको इतना मजा चखाऊं कि फिर याद ही नहीं रहता कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। तो इसके अंदर समझना चाहिए कि मैं बाउंड हूं, मेरी लिमिटेशंस है, मैं इसके आगे नहीं जा सकती। आजकल हम अल्लाह के गुलाम नहीं है, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन गए हैं, अपने जज्बात के गुलाम बन गए हैं, अपनी मर्जियों के गुलाम बन गए हैं, और दुश्मनी में भी इस हद से आगे बढ़ जाते हैं कि अल्लाह ताला के हुक्मों को भी तोड़ते हैं, और उसमें नहीं कोई फिक्र होती। तो ये जितनी किसी से भी मर्जी नफरत हो जाए, जब कह दिया गया ये अल्लाह की हदें हैं, इनको नहीं क्रॉस करना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि दिस इज लॉ, चाहे उस कंट्री का लॉ नहीं भी है, वो कंट्री नहीं आपको कुछ कहेगा, वहां पे कोई पुलिस नहीं आपको आपको पकड़ेगी कि इसका फ्रिज टीवी वापस किया कि नहीं, इसका फर्नीचर आपने वापस किया कि नहीं, वो नहीं पूछेंगे। लेकिन ये समझना चाहिए कि एक अल्लाह का भी तो कानून है ना। हाँ, मुल्क के कानून होते हैं, जहां पे पुलिस का डर होता है, अदालतों का डर होता है, सजा का डर होता है, हम कितना डरते हैं, जहां पे अल्लाह कह दे कि वो जालिम है जो ऐसा करेगा, वहां पे ये कितना डर होना चाहिए। और जालिमों की सजाएं देखी है फिर आपने, जुल्म जो है ना, कयामत के दिन अंधेरे होगा, जहां पे लोगों को नूर दिया जाएगा उनके पास कोई नूर नहीं होगा, जुल्म अंधेरों की सूरत में होगा कयामत के दिन, और ऐसा करने वाले खुद को जालिम समझते हैं। हम जालिम किसको कहते हैं? वो जागीरदारों को, वडेरों को, उनको, वो जो ऐसा करते हैं, वो जिम्मेदारों को, वो जी जालिम होते हैं। जब हम आम जिंदगी में जुल्म कर रहे होते फिर क्या होता है? और अफसोस ये कहना पड़ता है मुझे कि बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रही हूँ, और आप सब भी इस बात को सुने गौर से मेरी बात, कि मेरे पास बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं उन्हीं लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं। बाज दफा ऐसे लोगों की तरफ से जो खुद स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उनको पता है कि ये इनकी टीचर हैं तो इसलिए आती हैं। बाज दफा हस्बैंड की तरफ से आती हैं, बाज दफा बहू की तरफ से आती हैं, बाज दफा मतलब बहुत ज्यादा कंप्लेंट सासों की, नंदों की, हस्बैंड्स की आती, बहुत ज्यादा। और इसके लिए मुझे इतनी शर्मिंदगी होती है आप लोगों के रवैयों की वजह से। मैं इंडिविजुअल नहीं, नहीं किसी को कह सकता, अगर हर कोई अपने गिरेबान में खुद झांक के, हर कोई, जो भी सास बैठी हुई है, जो भी नंद बैठी हुई, हस्बैंड तो कोई सुन नहीं रहे होंगे, अगर कोई सुन रहे हैं तो वो भी समझे। और बाज दफा हस्बैंड्स की तरफ से बीवियों की आती शिकायतें कि ये आपकी क्लास में पढ़ती हैं और ये करती हैं घर में। अब मैं आप लोगों से कुछ चाहे जानती हूं चाहे नहीं जानती, मैं जाहिर है इंडिविजुअली किसी को पकड़ के नहीं कह सकते, मगर समझना चाहिए ये हदूद है अल्लाह की, अल्लाह की बाउंड्रीज को समझें। मजाक नहीं है ये बातें, खुद भी चैन से रहें और दूसरों को चैन से रहने दें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया इस्लाम का हुसन ही ये है कि तुम ला यानी बातों में ना पढ़ो, छोड़ दो उनको, जिस चीजों से आपका ताल्लुक नहीं है। कोई मियां बीवी रह गए, हमारा क्या ताल्लुक है कि हम उनके अंदर दखल अंदाजी करें, क्या कर रही है, क्या उठ रही है, बैठ रही है, सो रही है कि जाग रही है, इसने उसको क्या दिया, उसने उसे क्या लिया, वो उसके साथ क्या करता है, ये उसके साथ क्या करती है, हमारा नहीं ताल्लुक। अगर हम आज ये काम छोड़ देना तो बहुत सारी तलाकें होने से बच जाए, लेकिन बहुत सारा कसूर है हमारा, क्योंकि हम में से हर कोई किसी ना किसी की नंद जरूर है, नहीं तो सास जरूर है। लेकिन देखो कि फिर हमारे रवैये क्या हैं अपनी भाभियों के साथ या अपनी बहुओं के साथ। लेकिन वैसे हम कुरान के स्टूडेंट हैं, दूसरों को मत देखें प्लीज, सब अपने आप को देखें, कौन क्या कर रहा है। आज मेरे से, मेरी भाभी से मेरा पूछा जाए तो वो मेरे बारे में क्या कहेगी, मेरी बहू से मेरे बारे में पूछा जाए तो वो मेरे बारे में क्या कहेगी, कुछ सोचें। और हर कोई जानता है कि हम कितने पानी में, लेकिन हम समझते हैं कि हम कंट्रोल करके हम काबू पा लेंगे और हम ऊपर हो जाएंगे, ये गलत फहमी है। याद रखिए जिस दिन वो कंट्रोल में आएगी ना तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उस दिन हमारी बेबसी के दिन होंगे, और दिन एक जैसे नहीं रहते, ये याद रखिएगा। आज किसी का पलड़ा भारी है तो कल किसी और का होता है, और अल्लाह दिखा देता है, और अल्लाह मजलूम के साथ होता है। तो आज आपका डंडा चल रहा है ना अगर, तो कल नहीं चलना। लेकिन आज अगर नरमी का सलूक करेंगी, भलाई करेंगी, खैर करेंगी, एहसान के लेवल पे जाएंगी, तो कल एहसान फिर एक्सपेक्ट करिएगा। और अगर आज आप खुद ऐसा नहीं कर रहे ना तो कल मत एक्सपेक्ट करना, फिर कल मत एक्सपेक्ट करना, क्योंकि मैंने बताया दिन एक जैसे नहीं रहते, तो डरे फिर उस वक्त से। बस पेरेंट्स का फोन आते हैं कि हमारी जो समधन है वो आपकी क्लास में, और वो ऐसा कर रही है हमारी बच्ची के साथ, क्या मैं कहूं उनको, बताएं क्या जवाब दूं उनको। और ये बहुत बर्निंग टॉपिक है जो बहुत अरसे से था, अब ये आयात आई है तो इसको एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि घरेलू मामलात आ रहे हैं, और बाज दफा मियां बीवी अपने मामला खुद हल कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरफेरेंस होती है तो वहां पे मसाइल की 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इंटरफेरेंस छोड़ दें, उनको अपने मसले खुद हल करने दें। आपने जब बेटे की शादी कर दी या बेटी की शादी कर दी तो किस लिए की? वो बालिग हुए थे तो की थी ना, अगर वो इतने बच्चे थे तो उनकी मत शादी करते, लेकिन वो बालिग हैं तो की है ना, तो लेट देम हैंडल, क्योंकि वो उसी से सीखेंगे। उनको कहें अपने मसले खुद हल करें, अनलेस वो ऐसे नहज पे आ जाएं कि बिल्कुल, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हकम बिठाओ फिर बीच में, क्योंकि वो नहीं हल कर पा रहे और इतने संगीन हो रहे, लेकिन ये क्या बात है, छोटी छोटी बातों के ऊपर इधर से भी माँ बाप इन्वॉल्व हो रहे हैं, उधर से भी माँ बाप इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? हमें ये नहीं करना, हमें उनको साफ कहना है कि तुम एडल्ट हो, तुम जाओ अपने मसले खुद हल कर। और सास उस तरफ से सासू और नंदों की क्यों ज्यादा आती है कंप्लेंट, क्योंकि अक्सर वो घर के अंदर रह रहे होते हैं, साथ रह रही होती हैं, इस वजह से उनकी ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं। या अगर अलग भी रह रहे हैं तो बहुत इंटरफेरेंस। अरे लड़की के माँ बाप तो उसके साथ नहीं रहते, वो तो कभी कभी आएंगे, लेकिन जो साथ रह रहे हैं वो दिन और रात की एक्टिविटीज देखते हैं, और दिन और रात उनसे खामोश नहीं रहा जाता, उन्होंने जरूर बीच में कूदना होता है। और ये याद रखें कि इंसान है हम, और चूंकि हम माँ बाप होते हैं, हम जरूर अपने बच्चे की साइड लेते हैं, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा हो। माँ बाप की मोहब्बत अंधी होती है, वो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल किसी की भी फेवर में किए बगैर बिल्कुल अनबायस्ड होके कोई फैसला करें। उनके कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे का ही साथ देते हैं, कहीं ना कहीं उनको यही फ्लॉ नजर आता है कि दूसरे में गलती थी। कहीं बेनिफिट देते हैं तो अपनी औलाद को देते हैं, और ये नेचुरल बात है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई कोई ऐसी ज्यादती की बात नहीं है, वो तो नेचुरल है। इसलिए बेहतर होता है फिर ऐसे मामले से इंसान दूर रहे, क्योंकि बहुत चांस है कि हम ज्यादती कर जाएंगे। तो इसलिए हम सब सोचें कि ये तलाक की नौबतें क्यों आती हैं, कहीं हमारा पार्ट तो नहीं है इसमें। और आज बहुत सारे घरों का ये मसला है, और आज तो इतने पे ही अगर आप शुक्र अदा कर लेना कि किसी की निभ जाए मर्द औरत की, तो यही बड़ी बात है ना, कि घर वाले भी बीच में कूद पड़े तो वो तो और ज्यादा मसला खराब हो जाएगा। उनकी आपस में ही बन जाए तो इस पे ही शुक्र अदा करें, और अगर और लोगों को राजी करने की भी बात आ गई तो वो तो वक्त गुजर गए। आज आज तो ये बहुत डिफरेंट हो गई है सोसाइटी, बहुत डिफरेंट हो गई है चीजें। आज हमें सेव करना है घरों को, कि ये आदमी और औरत इनकी आपस में बन जाए, और अगर ऊपर जलती के ऊपर तेल डालने की का काम हम कर रहे होंगे तो नहीं उनकी बनेगी, और फिर कौन खुश होगा? क्या अल्लाह ताला तलाकों से खुश होता है? सुलहु खैर, आगे आप पढ़ेंगे, सुलह में खैर है, अल्लाह ताला ने ये फरमाया। ऑप्शन तो रखी है तलाक की, लेकिन इसको पसंदीदा नहीं किया कि उनको बहुत पसंद है कि घर घर टूटे। कौन इसे खुश होता है पता है ना आपको? वो हदीस पता है ना कि शैतान अपना तख्त जब लगाता है और पूरी कार्रवाई सुनता है लोगों से, वो जो अपने चेलों से कि क्या क्या आज कारनामे करके आए, तो एक जब कहता है कि मैंने मियां बीवी में जुदाई करा दी, तो खड़ा होकर उसको गले लगाता है, अपने साथ बिठाता है कि तूने असल काम किया, बाकी किसी ने कत्ल कराया, किसी ने किसी का झगड़ा करा दिया, किसी ने किसी के साथ कुछ ज्यादती करा दी, जुल्म करा दी, उन पे नहीं खुश होता, सबसे ज्यादा इस काम पे खुश होता है, क्योंकि ये काम के बहुत दूर तक इफेक्ट्स जाते हैं, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन जहां पर भी अपना कोई हिस्सा डाल रहा होगा, हम सोचते हैं कि नहीं मेरे इस तरह कहने से क्या होगा, तलाक थोड़ी हो जाएगी। हाँ नहीं, उस दिन तो नहीं होगी, लेकिन जब आप डालते रहेंगे फ्यूल, डालते रहेंगे, जब आप छोटी छोटी बातें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो एक दिन क्या होगा, बड़ी आग लग जाएगी, एक दिन तलाक तक नौबत पहुंच ही जाएगी, क्योंकि आदमी के दिल से वो औरत उतर ही जाएगी फिर मुसलसल कमेंट्स देने से, ये इस वक्त उठती है, इस वक्त बैठती है, इसने ये कर दिया, वो कहे तो ऐसे बच्चों को रखती है, वो नहीं करती, वो नहीं, ये फोहड़ है, ये ऐसे है, ये तो इसका खाना देखो कैसे, इसको तो ये नहीं बनाना आता, इसकी तो हुलिया देखो, जब मुसलसल ऐसी चीजें होती रहेंगी तो एक दिन क्या आएगा। इसलिए ऐसे कमेंट से बाज रहें, इंटरफेरेंस ही ना करें। इंटरफेरेंस जब आप नहीं करेंगे तो बहुत चीजें खुद ब खुद हल हो जाएंगी, जो वो करते उनको करने दें। हमारी जो हिकमतें हैं ना अपने पास रखें, अगर आपसे कोई हिकमत मांगे, आपका मशवरा मांगे, बहुत हो सकता है आप सब लोग बहुत अकलमंद हो, बहुत अच्छी तरह चीजों को हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर सब लोग एक बंदे को ही हकम समझ लें और एक बंदे को ही अकलमंद समझ लें, तो दुनिया बहुत संवर नहीं जाए। अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को बनाया कि उसको आजादी दी है कि वो जो भी करे। जब अल्लाह ने आजादी दी है तो खुदा के लिए हम भी लोगों को आजाद छोड़ दें, सबको अपनी लाइन पे चलाने की जरूरत नहीं है कि मैं अकलमंद हूं, जो जैसे मैं कह रही हूं ना वैसे चलना चाहिए, आपका दिल चाहता होगा कि लोग नुकसान से बचें, आपका दिल चाहता होगा आपसे कोई मशवरा पूछे 100 दफा भी, लेकिन कोई नहीं पूछता तो कोई जरूरत नहीं देने की, कोई जरूरत नहीं लोगों को अपने मुताबिक चलाने की। लेट देम डू वॉट दे वॉन्ट टू डू। अगर वो अपने बच्चों की परवरिश अपने मुताबिक करना चाहते हैं तो करने दें उनको। बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से वो सीख लेंगे कि कैसे पेरेंटिंग करना। जरूरी नहीं कि हमने बताना है कि तुम्हें अच्छा पेरेंट कैसा बनना। तो ये इस जीवन में बात आई, चूंकि तलाक की बात चल रही है तो नौबतें यहां तक क्यों पहुंचती हैं, और फिर नफरतें इतनी क्यों पड़ जाती हैं, क्यों इतनी बदमजगियां होती हैं, तो कोई रीजन होते हैं उसके पीछे। बहुत देर से कुछ हो रहा होता है तो तब ये इतना बड़ा वो बम बन जाता है कि वो एक दिन ही फटता है। तो इसलिए ऐसी चीजों से हत्ताउल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम बचें। किसी की भी जिंदगी में, चाहे वो आपकी दोस्त ही क्यों नहीं है, दोस्तों को भी इस तरह की बातें ना कहें कि वो अपने घर से, अपने ससुराल से, अपने शोहर से मुतनफिर हो जाएं, उनको छोटी छोटी बातों पर ऐसे भड़काए नहीं, इस तरह तुमने, तुम्हें उसने क्यों कह दिया, वो तुम्हें ये क्यों करता है, तुम्हें ऐसे क्यों, इस तरह की चीजें नहीं करें। सुलह सफाई की कोशिश करें, अमन वाले बने, शर वाले ना बने। तो यहां तक हमने देखा कि ये तलाक़े रजी के अहकामात हैं। अब उसने उसको वन टाइम, अब ये लिख लें इसको, तलाक़े रजई यानी रिवोकेबल तलाक, यानी जिसमें वापसी हो सके वो वाली तलाक। उसमें क्या है कि आदमी ने किसी अपनी बीवी को तलाक कही, फिर इद्दत का टाइम शुरू हो गया, वो औरत उस घर से नहीं जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर इस दौरान, याद रखिए, अगर इस दौरान आदमी की डेथ हो जाती है तो औरत को विरासत में भी हिस्सा मिलेगा, क्योंकि अभी ये पूरी आजाद नहीं है कि अपना बैग पकड़े और घर से जा रही है, नहीं। उस औरत का नान नफका, खाना पीना, उसका कपड़ा, उसका जो भी, उसकी कोई मेडिसन है, सब इस आदमी के जिम्मे है इद्दत के दिनों में। ये तलाके रजई की बात बता रहे हैं, तलाके रजई लिखे, तलाके रजई कौन सी है, तलाके रजई कौन सी है, पहली तलाक या दूसरी तलाक, उसके अंदर क्या है तलाके रजई में, ये अहकाम आता है कि औरत जो है उसको आदमी अपने घर रखेगा, उसके सारे प्रोविजंस प्रोवाइड करेगा, सब नानफका प्रोवाइड करेगा उसको, उसका खाना पीना रहना सहना सब वहीं होगा, रहाइश वहीं होगी, उसको घर से नहीं निकालेगा। ये सब तलाके रजई है। ये कब तक होगा, जब तक उसकी इद्दत है, जब तक उसके 3 पीरियड्स खत्म नहीं हो जाते, या 3 तोहर या 3 पीरियड्स, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। अच्छा, अब इसके दौरान आदमी के पास क्या चांस है, रुजू का चांस है, आदमी के पास ये चांस है कि वो औरत को वापस ले सकता है। यानी कैसे रुजू करेगा, ये हमने 228 आयत में पढ़ चुके हैं ये बात, कि वो कोई बात ऐसी कह दे या उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लेता है या कुछ भी, तो उससे रुजू हो जाएगा, सुलह सफाई हो गई, यानी तो भाई खत्म करो बात को, दोस्ती कर ली वापस। लेकिन ये क्यों करे, अगर उसको बसाने का का अब इरादा है तब करे, अगर बसाने का इरादा नहीं है तो जब उसके 3rd पीरियड खत्म हो, यानी इद्दत खत्म हो, तो क्या करे, उसको अच्छे एहसान के तरीके के साथ उसको रुख्सत कर दे, ठीक है ना। ये आपको बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये एक तलाक हो गई, अब जिंदगी में और कभी तलाक दी तो फिर वो दूसरी हो जाएगी, उसमें भी एग्जैक्ट सेम यही होगा। लेकिन अगर जिंदगी में 3rd टाइम कह दिया कि तुझे तलाक है, तब क्या होगा, तब अब ये इद्दत का टाइम इसके घर नहीं गुजारेगी। क्यों, क्योंकि अब उसकी वो बीवी नहीं है। ये जो पिछले 2 तलाकों में, रजई तलाकों में उसके घर रह रही थी, क्योंकि ये समझ लें सस्पेंशन पीरियड समझ लें ना, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पूरी तरह बीवी है, ना हम कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह तलाक याफ्ता, इसीलिए उसको तलाके रजई कहते हैं। जब 3rd तलाक हो गई तो जिसको कहेंगे तलाके मुगल्लिजा, मुगल्लिजा मतलब क्या, मतलब पक्की हो गई, अब भी बुरी जुदाई है, अब मुगल्लिजा मतलब गलीज से समझ लें, जैसे हम कहते हैं बुरी, अब आदमी के पास कोई चांस नहीं है, इसका मतलब मुगलिजा का मतलब बुरी नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ कि थर्ड टाइम किसी ने जिंदगी में अगर कह दिया कि तुझे तलाक है, तो अब वो औरत ये वाला टाइम है कि वो इद्दत इसके घर में नहीं करेगी, ना आदमी ना नफका देगा, वो चली जाएगी यहां से, उसके साथ उसका ताल्लुक खत्म हो गया, लेकिन वो इद्दत फिर भी उसकी रहेगी, इद्दत में वो रहेगी, यानी वो किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती 3 पीरियड्स खत्म होने तक, ताकि पता चल जाए कि इसका बच्चा तो नहीं है इसके पेट में, तो वो इद्दत के अंदर रहे और इस इद्दत को वो कहीं और गुजारेगी, अपने मेके में गुजारे, अपने जहां पे भी मेका नहीं है तो जो भी उसके है, मगर इस आदमी के साथ उसका ताल्लुक खत्म हो गया, ये आदमी अब उसके लिए हराम है, उसके साथ तो ताल्लुक नहीं हो सकता। उसी की बात अब यहाँ पे आ रही है अगली आयत में, यानी थर्ड टाइम जब तलाक हो गई। अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्या हो गया अब कि तलाक कैसे दी जाती है, पहली दूसरी तरह को तो पता ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, किसी के पास भी जाएं आप हमारे मुल्कों में, उसके वहां पे जाके कहें जो वसीका नवीस होते हैं कि लिख दो तलाक, तो वो 3 तलाक लिख के दे देता है पेपर पे, तीन नहीं, 1 तलाक से ही वो मतलब खत्म हो गया, अब तो इद्दत गुजारेगी और चली जाएगी, अगर अलग करने का इरादा कर लिया तो 1 से ही हो गया, 3 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वक्त में और हजरत उमर की खिलाफत के पहले 2 साल में 3 तलाक जो जिसने एक ही टाइम पे दे दिया हो तो उसको 1 तलाक शुमार किया जाता था, यानी एक ही समझा जाता था, कोई 100 दफा कह दे तलाक 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 तलाक, मैं तुझे 100 तलाक देता हूँ, तो वो 100 नहीं हो जाएगी, वो एक ही समझी जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे दी, इसलिए मैं मर्रा तान के ऊपर इतनी ज्यादा जोर दिया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए। हजरत उमर के वक्त में लोगों ने ये बहुत टू मच कर दिया था कि एक ही वक्त में 3 3 तलाके कहना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने कहा ये सही नहीं है, एक वक्त में ऐसे नहीं कहो, क्योंकि देखें नबी अलैहिस्सलाम के वक्त में एक ही तलाक दी जाती थी एक वक्त में, लेकिन एक दफा किसी ने एक वक्त में 3 तलाकें कह दी और उसने आके नबी अलैहिस्सलाम को जब बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से में आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से खड़े हो गए और फरमाया कि मेरे होते हुए अल्लाह की किताब के साथ ये खेल शुरू कर दिया जबकि मैं मौजूद हूं और ये शुरू हो गया, इतने ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी मौजूदगी में किताब अल्लाह के साथ खेला जाने लगा, यहाँ इतने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आए थे कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा या रसूल्ला आप मुझे इजाजत दे मैं इस आदमी को कत्ल कर दूं, यानी इसने ऐसा काम किया और इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी। और एक दफा एक रिवायत में आता है रुकाना की कि उन्होंने अपनी बीवी को एक ही दफा में 3 तलाकें दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछा था, तो आपने पूछा कि किस तरह तलाक दिया, तो उन्होंने कहा 3 तलाकें एक दफा में दे दिया, तो आपने फरमाया था कि अच्छा जाओ तुम रुजू कर लो क्योंकि एक ही तलाक हुई है, अगर तुम चाहो तो रुजू कर लो, एक ही तलाक हुई, अबू दाऊद तिरमिजी और दारमी में ये रिवायत मौजूद है। तो हजरत उमर ने अपने दौर में चूंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन होने लगा था तो उन्होंने एक समझ लें ताजीर के तहत, ताजीर होती है यानी जरूरत वक्त की जरूरत के तहत कोई चीज कोई कानून बनाना, तो उन्होंने उस वक्त की जरूरत के तहत सख्ती करने के लिए ये कानून बनाया था कि अब से ठीक है अगर तुम 3 तलाकें दोगे तो 3 ही काउंट होंगी, फिर आराम से बैठो, फिर जाओ जाके फिर रोते रहो और फिर सजा भी मिलेगी, कोड़े भी लगाए जाएंगे, और उसके बाद कोई और सूरत नहीं है कि तुम हलाला कराने चले जाओ कि बीवी दूसरे से शादी करे और फिर आए, कि जिसकी बात आ गया, उन्होंने इस चीज को रोकने के लिए ऐसा किया था और लोग वाकई रुक भी गए थे फिर, लेकिन ये उस वक्त की जरूरत थी क्योंकि उस वक्त में ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने एक सजा के तौर पे ये की थी, यानी कोई परमानेंट कानून नहीं था, उन्होंने अपने वक्त में सहाबा को बुला के सबके कंसेंसस के साथ सबकी रजामंदी के साथ इस चीज को किया था कि ये देखे इस तरह से अब हो रहा है तो इसको एज सजा इनको देने के लिए इस तरह किया जाए, लेकिन इससे अल्लाह के कानून में चेंज नहीं आ जाता, ठीक है ना। तिलावत सुन लेते हम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक।
طلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.